जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर विषय मंजूर नहीं, मुझे हर विषय मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे,
शांति। आज रूहानी क्रांति के सूत्र के दसवां दिन है, 21 जुलाई 1973 का मुरली है, रूहानी जस्टिस और जिस्मानी जस्टिस। बाबा तो सुप्रीम जस्टिस है जो सफलता मूर्त बनाने वाले हैं, सर्वधारणाएं धारण कराने वाले हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाले हैं। ये बाबा हमारा सुप्रीम जस्टिस है। तो बाबा हमको निमित्त बनाकर, खुद बैकबोन बनकर हमको सब कुछ सिखाते हैं। बाबा ने बोला है जो निमित्त बनते हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी बहुत होते हैं। भले बैकबोन बाबा है, जिम्मेवारियाँ हमारा बहुत है, क्योंकि अगर किसी को गलत जजमेंट दे दे, उस जिस्मानी जो जस्टिस है अगर गलत जजमेंट दे देते हैं, कुछ समय के लिए उसको नुकसान हो सकता है इस जन्म में, और कुछ आपदाएं उसके जीवन में हो सकते हैं। लेकिन हम रूहानी जस्टिस है, अगर हम किसी के प्रति जजमेंट करें, भले संकल्प से करें चाहे कर्म से करें, तो हम जन्म जन्मांतर के उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए पहले तो बाबा बोलते हैं नॉन जजमेंटल बनना है, किसी कोई किसी का जज नहीं करना है। रूहानी जस्टिस इधर इस मुरली में बाबा ने कहा है, अगर किसी का कल्याण के लिए अगर कुछ जज करते हैं और उसको कोई सलाह देते हैं, और जज देते समय, जजमेंट देते समय हमारे अंदर उसके प्रति कल्याण की भावना हो, उसको आगे तरक्की हो, उस हिसाब से अगर जजमेंट देते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक साक्षी अवस्था में हम नॉन जजमेंटल बन जाते हैं, किसी के वो जज ही नहीं करना है। इसलिए बाबा ने बोला जो बुद्धि का तराजू एकाग्र हो जाता है, बुद्धि का जो खाटे जो एकाग्र हो जाते हैं, तब अच्छा जजमेंट दे सकते हैं। तो उससे उसके लिए लव एंड ला की बहुत जरूरत है, और स्नेह और शक्ति का बहुत जरूरत है, और साक्षी भाव का भी जरूरत है। बातें बाबा ने बहुत धारणाएँ बताए हैं, इच्छा मात्र अविद्या की आवश्यकता है। इसलिए अनेक पॉइंट्स है इसमें, एक एक सेंटेंस जो है बाबा का बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो जो बाहर के जस्टिस है वो हमारा बोल और कर्म के ऊपर जजमेंट देते हैं, इधर बाबा बोलते आत्मा का संकल्प को परखना और जजमेंट देना है, और उसका कल्याण के लिए। तो इसके लिए बाबा ने कहा है लव एंड ला और स्नेह और शक्ति का बैलेंस चाहिए। सो यथार्थ परखने के लिए दो धारणाएं बहुत जरूरी है। सो बाबा ने कहा है, जैसे एक भाई था उधर बिहार की, उसको बहुत मन में प्रश्न था, तो इधर आया था मधुबन में और साकार बाबा से मिला, तो उसका एक संकोच भी हो रहा था कुछ बाबा से पूछने के लिए, तो बाबा के पास गया ट्रॉली लेने। बाबा ने बोला बच्चे टॉयलेट में भी बाबा को याद कर सकते। तो वही प्रश्न उसको महीने पर उसको बुद्धि में था कि बाबा को कैसे पूछे ये बात, तो बाबा ने जस्ट बता दिया बाबा को टॉयलेट में भी याद कर सकते बिना पूछे, जैसे बाबा ने परख लिया बच्चे को। तो बाबा के अंदर इतना परखने की शक्ति थी, तो बाबा डायमंड को परखता था और लेके आता था रॉ डायमंड्स, जैसे बंटवारा हुआ उसका पार्टनर के साथ, जब बाबा हैदराबाद सिंध आने वाले थे उस समय बाबा ने रॉ डायमंड्स लिए उससे, क्योंकि बाबा को परखता डायमंड्स का जो कटिंग्स है, एज है, उसका शेप है, उसका सारा परखता, इसीलिए बाबा ने कुछ पैसे कुछ रॉ डायमंड्स भी लिया। ऐसे जैसे बाबा उधर जाते थे, बॉम्बे में जाते थे, लंदन से ये डायमंड्स का पोच आते थे, सो वो जो दुकानदार था उसने का एक नियम था, वो पोच का इतना दाम है उतना दाम देकर आप ले सकते हैं, पोच के अंदर कुछ आप उसके अंदर नहीं देख सकते, जो पोच आया लंदन से वो पोच का इतना दाम है वो ले जाना है, इसमें सिलेक्शन नहीं कर सकते। बाबा ने उससे बात किया, बोला मैं एक्स्ट्रा पैसा दूंगा लेकिन मैं सेलेक्ट करूंगा डायमंड्स को, आपको एक्स्ट्रा पैसा मैं दे दूंगा, जो पोच का दाम है उससे ज़्यादा दे दूंगा। ऐसे बाबा डायमंड को परखते थे, परखने के बाद वो सेलेक्ट करके लेके आते थे, कलकत्ता से बॉम्बे जाते थे, बॉम्बे से लेके आते थे। ऐसे बाबा परखने में शुरू से ही डायमंड को परखते थे, और इधर आध्यात्मिकता में आने के बाद बाबा आत्माओं को भी परखने लगे, इस आत्मा को क्या चाहिए, तो लव एंड लॉ के बैलेंस से बाबा ने चलाया, हर एक आत्मा को परखा और आत्मा को आगे बढ़ाया उसका कल्याण के लिए। इसीलिए अगर किसी को परखते हो या रूहानी जस्टिस बनकर, उनको क्या जरूरत है उसके लिए, उसका कल्याण के लिए वो परख सकते, आप जजमेंट ले सकते हैं। अगर किसी को नकारात्मक रीति से जजमेंट लेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा और उनको भी नुकसान होगा, इसीलिए बहुत रॉन्ग जजमेंट अगर दे देते हैं जीवन में नुकसान हो जाता है। सो निमित्त आत्माओं का बहुत जिम्मेवारी है, और मैंने कहा निमित्त आत्मा है लेकिन बैकबोन बाबा है। इसके लिए बाबा ने एक धारणाएं बताई जो मैंने पहले ही बताया, इच्छा मात्रम अविद्या। अगर इच्छा मात्रम अविद्या है और निर्विकल्प स्थिति है, निसंकल्प है, तो जजमेंट ठीक तरह से दे सकते। अगर हमारे अंदर ही इच्छा है तो उनका जो इच्छा है हम परख नहीं सकते, किसी आत्मा को परख नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने कहा अगर किसी को शांति चाहिए आप सुख का रास्ता दिखा रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं करेगा, वो संतुष्ट नहीं रहेगा। इसीलिए आपको महादेवी स्वरूप बनना है, वरदानी स्वरूप बनना है, इसके लिए इच्छा मात्रम अविद्या का धारणा बहुत ही है, बहुत जरूरी है। तो इच्छा मात्रम अविद्या का जो धारणा है इतना सिंपल नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, कोई भी सूक्ष्म और स्थूल इच्छा से परे होना चाहिए, तभी ये जो इसको ही फरिश्ता अवस्था कहा जाता है, कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। तो अगर उस लेवल में पहुंच जाएंगे हर एक आत्मा को परख भी सकते हैं, उनको जो चाहिए वो दे सकते हैं, और गलत जजमेंट भी नहीं होगा, उसको जीवन को उद्धार कर सकते हैं। सार है इस मुरली का, पूरा सार है इच्छा मात्रम अविद्या। तो इच्छा मात्रम अविद्या को धारण करना है, इच्छाओं से परे रहना है, अगर इच्छाओं से परे रहेंगे उनकी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। सो बाबा ने कहा ये यहाँ कंपटीशन है, मना जो आगे जाने के लिए मना हेल्थी कंपटीशन है। हेल्थी कंपटीशन मना जैसे बाबा ने कहा म्यूजिकल चेयर है, म्यूजिकल चेयर में जैसे जैसे चलते रहते हैं जब सीटी बजती है तो जाके बैठ जाते हैं, एक दूसरे का कंपटीशन रहता है। ऐसे ही बाबा ने समय का सीटी बजा रहे, बाबा अभी समय नज़दीक आने वाला है, हमको बैठना है अपनी स्थिति में, हमारा जो सिंहासन है उस पर बैठना है, इसीलिए अपने सीट पर सेट होना है, इसीलिए उसके लिए तैयारी रखना है। जो नहीं बैठते वो गेम से आउट हो जाता है, इसीलिए सभी तैयारी के साथ रहना है, कभी भी सीटी बज सकते। बाबा ने बोला बहुत गई थोड़ी रही, माना सीटी कब भी बज सकती, जैसे बाबा ने शुरू किया था अचानक और एवरेडी का। सो जो बाबा ने कहा जो इंतज़ाम किया है वो इंतज़ार कर सकते हैं, माना जो एवरेडी है वो आगे के लिए वो तैयार रहते हैं, कब परीक्षा एग्ज़ाम आए मैं पास हो जाऊँ, माना वो हमेशा इंतज़ाम में रहता है, इंतज़ाम में रहते हैं, इंतज़ार करता है, माना रेडी है, वो कभी भी एग्ज़ाम आए में मैं पास हो जाऊँगा उसके अंदर इतना निश्चय रहता है। सो जिसका इंतज़ाम है वो इंतज़ार करते हैं। तो निमित्त आत्माओं को, जैसे निमित्त आत्मा है वो सदा विश्व कल्याणकारी है और उस हिसाब से वो हमेशा अपना मन वचन कर्म से रहता है, माना वो हमेशा इंतज़ाम में है और आगे के लिए इंतज़ार करेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सो इसके लिए बाबा ने कहा है कि कोई घबराने की बात नहीं है, जैसे हम सरेंडर होते हैं, जैसे चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहे हैं, तो इसीलिए उस हिसाब से समर्पित भाव से हम रहेंगे तो आगे बढ़ाता रहेगा। बाबा ने हमको चुना है, आगे बढ़ाने वाला वही है, इसीलिए निश्चिंत रहना और निर्भय रहना है। तो सर्वशक्तिमान बाप हमको वही धारण, इसमें पहले जो शुरुआत किया बाबा सुप्रीम जस्टिस है, धारण कराने वाला वही है, सर्वशक्तियाँ देने वाले वही है, मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने वाली वही है, सफलता मूर्त बनाने वाले वही है, और क्या चिंता है, हमको चलना है बस, वो चलाता रहेगा। सो बाबा ने बोला जो चार सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा है, बाबा ने इस बारे में बताया, जैसे चार सब्जेक्ट है और चार संबंध भी है, सत बाप, सत शिक्षक, सत सदगुरु, सदगुरु और चौथा, तो चौथा है साजन। इस मुरली माँ बाबा बोला जैसे साजन सजनी का संबंध है, जैसे आत्मा परमात्मा का संबंध है। सो बाबा ने बोला कि मेन चार संबंध है, उसके लिए मेन चार जो धारणा है। सो बाप के संबंध में क्या धारणा है, बाप के संबंध में क्या धारणा है, फरमान बरदार बाप की संबंध में धारणा है, और शिक्षक के रूप में जो धारणा है ईमानदारी, और सद्गुरु के रूप में है आज्ञाकारी। सो साजन सजनी के रूप में है वफादार। सो ऐसे चार धारणाएं हैं, चार धारणाएं हैं, इसको लगातार हम इसको जीवन में पूरा ब्राह्मण जीवन में उसको बार बार स्मृति में लाना है, नहीं तो बाबा बोलते जो रसिया बीच बीच में कमज़ोर हो जाता है, माना धारणाएं टूट जाता है तो वो स्ट्रांग नहीं रहती है, इसीलिए ये कंटिन्यूस हमेशा निरंतर रहे तो रस्सी मजबूत रहे। सो ये तीन चार धारणाएं के संबंध में बाबा ने चार स्लोगन्स बताए। सो चार स्लोगन्स क्या है? बाप के रूप में स्लोगन्स है सन शोज फादर मैंने जैसे सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। और टीचर के रूप में स्लोगन है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, माना अंतिम श्वास तक पढ़ते ही रहना है बस। स्टूडेंट लाइफ मरने दम तक पढ़ना ही है पढ़ना ही है बस, बोला इसे छूटना नहीं इसीलिए शिक्षक के रूप में अंतिम समय तक पढ़ता ही रहने का बस। ऐसा नहीं समझना कि मैं सब पढ़ लिया, पूरा हो गया, मैं सब जान लिया, पढ़ाई बोर हो गई। नहीं 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 चीज़ आती रहती है। बाबा ने बोला समय प्रति समय नया नया बातें भी बता दूंगा, अभी तक जो गुप्त है आगे के लिए बाबा वो बताएगा जब समय होता है बता देगा। तो इसीलिए बाबा ने बहुत धारणाएं बताई इस मुरली में, अंत में बोला बच्चे घबराने की जरूरत नहीं वो भी सांत्वना दे दिया तो इसीलिए बाबा बीच बीच में थोड़ा रिहर्सल करता है, इसीलिए आप वो कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। सो सद्गुरु के रूप में जो स्लोगन है, जैसे बिताए जहाँ बिताए, जहाँ सुलावे जो खिलावे, तो ये सद्गुरु के रूप में स्लोगन है। और साजन सजनी के रूप में जो स्लोगन है, तो हर श्वास तुम्हारा साथ है, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से सब कुछ, जो श्वासोश्वास हर धड़कन में तुम्ही हो, ये साजन सजनी के रिलेशनशिप में स्लोगन है। ये बीच बीच में बाबा ने बोला रिवाइज करते रहना है ताकि कभी रस्सी जो है वो कमज़ोर ना हो जावे। सो बाबा ने पूछा सूर्यवंशी महाराजा बनना है या महाराजा के फैमिली में आना है? अगर ये धारणाएं रहेंगे, ये चार संबंध, चार स्लोगन, चार धारणाएं हमेशा रहेंगे, तो महाराजा के रूप में आपका पार्ट चलेगा सतयुग में, नहीं तो महाराजा के फैमिली में आ जाएंगे। और बाबा ने कहा स्वयं को जज करो, तब दूसरों को जज कर सकते हैं, परख सकते हैं। सो स्वयं को जज करना बहुत मुश्किल है सो हमेशा हम दूसरों को जज करते रहते हैं सो स्वयं को जज करो, इसीलिए तो स्वयं जो जज करेंगे तो दूसरों को परख सकेंगे, नहीं तो बहुत। इस जज करने से क्या होता है, स्वयं को जज करने से सर्व प्राप्तियाँ उपलब्ध हो जाती, सर्व प्राप्तियाँ अपने जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा अंदर जज करेंगे जो भी हमको पता है हम क्या किस में कमज़ोर है और क्या फिलअप करना है, इसीलिए प्राप्तियाँ आ जाती हैं पूरा। अभी बाबा ने बोला है जो अमृत वेले से बच्चे कंप्लेंट्स करते रहते हैं, मेरे बाबा मेरे से ये नहीं होता वो नहीं होता है, ये करना है, मेरा ये हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं पुरुषार्थ नहीं करता हूँ कर सकता हूँ, तो ये कंप्लेंट्स होता रहता है बाबा से, हम अमृत वेले से रू रहन चलते रहते हैं। बाबा ने बोला अगर मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान की धारणा होगी, सब कंप्लेंट्स समाप्त हो जाते हैं, सब कंप्लेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, माना कंप्लीटली कंप्लेंट फ्री हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने बोला है ये सर्वशक्तिवान की धारणा करो, मास्टर सर्वशक्तिवान की। जैसे बाबा ने बोला जैसे संपूर्ण नज़दीक आते रहते हैं, जैसे संपूर्णता के समय आते रहते हैं, उसका निशानी क्या है? जब से नज़दीक आते रहते हैं एक नशा हो आता है आत्मा में, एक नशा, तो एक बहुत एक तृप्ति नशा रहती है। वो कौन सी नशा है? बाबा ने पूछा, जैसे समय नजदीक आया है, तो बोला बाबा ने कहा है तो सफलता मूर्त बनेंगे, मन वचन कर्म से सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सफलता होगा नहीं होगा, ऐसे संशय नहीं रहेगा, हुआ ही पड़ा हुआ है। इसीलिए बाबा ने कहा अति समीप रत्न है, सामने वाले रत्न है और समीप रत्न है। जो सफलता मूर्त बनेंगे, जो अति समीप रहेंगे, उसका जो वाणी में सिद्धियां हैं, कर्म में उनको 100% डेफिनेट है कि मैं सफलता रहूंगा, इसीलिए उसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए ऐसे नशा रहेगा, अंतिम समय में सब कुछ मेरा सफल हुआ पड़ा है। जब सफल होंगे, सफलता मूर्त बनेंगे, दूसरों का संकल्प को भी वो सफल कर सकते हैं, बाबा ने कहा। इसीलिए सभी के अंदर ये कभी कभी हलचल हो जाती है, आगे क्या होगा, जैसे हलचल हुआ व्यक्त से अव्यक्त मिलन होता था पहले, तो कब तक चलेगा ये, कब तक ये चलेगा, आगे क्या होगा। जब अव्यक्त मिलन का भी अव्यक्त से अव्यक्त मिलन होता है, जैसे वो भी प्रैक्टिस कराया बाबा ने, क्योंकि बाबा ने बोला ये बीच बीच में प्रैक्टिस कराना होता है, क्योंकि बच्चे वो स्टेज पहुंचे, तो ये हलचल मन में आता है बच्चों के मन में कि ये सारा कैसे हो। बाबा ने कहा है आगे चलकर अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त मिलन होगा। अव्यक्त स्थिति से अभी वो समय आ गया है, बाबा ने बोला कि मुझे अंत तक आना ही है, जब तक बाबा का प्रत्यक्षता नहीं होता है तब तक बच्चों का और बाप का मिलन होता ही रहेगा, चाहे वो व्यक्त से अव्यक्त हो, अव्यक्त से अव्यक्त हो, अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त हो, तो ये होता ही रहेगा। तो इसीलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, बच्चे बीच बीच में ये करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए। इसीलिए बाबा ने बोला जो अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त मिलन मनाएंगे, जिसका अव्यक्त स्थिति है, तो अंत में बाबा ने बोला उसको टेलीग्राम त्रंकाल काल, तो सब उसका बुद्धि में टचिंग हो जाएगा कंप्लीट, सब उसका कोई कुछ करने का उसका फ्री कम्युनिकेशन है बाबा से। तो अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए अभी वही समय आ गया है, तो अव्यक्त मिलन भी खत्म हो गया है, क्योंकि बाबा ने बोला अंत तक मुझे जो बच्चों का हक है वो देना ही है। जब भी अभी ऑनलाइन हक हो गया सबका, ऑनलाइन से जो भी अपना अपना हक ले रहे हैं, सो इसीलिए तो बाबा ने कहा अंत तक मुझे बच्चों को हक देना, इसीलिए अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन होता रहेगा। इसीलिए आप जो भी सूक्ष्म संकल्प का भी टचिंग होगा, और बाबा अव्यक्त भाषा में हमको टचिंग करेंगे, इसीलिए कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसीलिए सो ईजी रहना है, ब्राह्मणों को टू मच सीरियस नहीं लेना है, और जो चल रहा है ठीक है, और बाबा को जब बोलते हैं तो हर एक को पुरुषार्थ करना ही है। बाबा ने बोला अपना सीट तो लेना है, कंपटीशन तो बता दिया चेयर लेने की, सीट लेने की, फिर भी दूसरी बात बता, बच्चे दिल शिकस्त न हो जावे, मूड ऑफ न हो जावे, इसलिए बाबा बोला बच्चे इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अंत तक आपको मिलता रहूँगा, जब तक प्रत्यक्षता नहीं होता है तब तक। इसीलिए लास्ट में बाबा ने वरदान दिया है, जो वरदान है बहुत 10 वरदान है, जिसको जो चाहे वो लेना है, तो इसीलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसे सदा सफलता मूर्त ज्ञान स्वरूप शक्ति संपन्न दिव्य धारणा संपन्न योग युक्त युक्ति युक्त संकल्प और कर्म करने वाले, युक्ति युक्त संकल्प और कर्म करने वाले, परखने की शक्ति को हर आत्मा के प्रति कर्म में लाने वाले हैं, रूहानी जस्टिस श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा वरदानी मूर्त आत्माओं को, और बाप दादा के नूर रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। इतना लंबा वरदान है इसीलिए मैं पढ़ के सुनाया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।